और मैं हूँ नरजिस कासमी।
ग्रीन शर्ट्स रवायती हरीफ के मद्दे मुकाबिल,
PSL 2018 के लिए मजीद इंटरनेशनल स्टार्स शिरकत पर आमादा हो गए।
नेडाल और फेडरर ने शंघाई ओपन टाइटल की कश्मकश।
विमेन्स टेनिस में मारिया शरापोवा ने फाइनल में कदम रख दिए।
शतरंज के खेल में पाकिस्तान का एजाज।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 5 वनडे मैचेस सीरीज का दूसरा मुकाबला कल अबू धाबी में होगा।
और सबसे पहले हम बात करेंगे हॉकी की, और हॉकी में हम बात करेंगे एशिया कप की, और एशिया कप में पाकिस्तान और भारत अब से कुछ देर बाद पंजा आजमा होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान जो फाइनल फोर में अगर क्वालिफाई करेगा तो उसको ये मैच जीतना होगा। भारत पहले ही फाइनल फोर में क्वालिफाई कर चुका है, उसने टूर्नामेंट के अपने पहले दो मैचेस में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 7-0 से जीत समेटी, जबकि दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और जापान सफारा हुए, जिसमें मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। और ये मैच भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, जापान के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान आज भारत के खिलाफ मैच में खासा कंफर्टेबल होता। लेकिन बहरहाल मोहम्मद इरफान जो कौमी टीम के कप्तान हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ हमारी तैयारियां जो हैं बड़ी भरपूर किस्म की हैं और हम पुरउम्मीद हैं कि हम भारत को शिकस्त से 2-4 कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम फतह हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। ये मैच आपको बताते चलें कि अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप में 6 बार आमना सामना हो चुका है। 6 में से 5 बार पाकिस्तान ने जानदार अंदाज से कामयाबी हासिल की है, जबकि एक मैच में भारत को जीत मुयसर आई है। यानी 6 में से 5 मुकाबलों में पाकिस्तान को जीत मिली है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि एशिया कप पाकिस्तान ने 3 दफा एशिया कप में फतह हासिल की है। फातिह हैसे से पाकिस्तान सुरखुरू हुआ है, पाकिस्तान चैंपियन बना है। ये बात है 1982 की, यानी 1982, 1985 और 1989, यानी 89 में 3 बार पाकिस्तान ये एशिया कप जीत चुका है, जबकि भारत को 2 बार जीत मयसर आई है। 2 बार भारत चैंपियन बन चुका है एशिया कप में। ये दोनों टीमें जो हैं एशिया कप में बहुत सीनियर टीमें हैं, दोनों ही टीमें बहुत उम्दा खेल पेश करती हैं, और जो हॉकी के रवायती स्टाइल है वो इन दोनों के पास है, और जिसमें आप देखेंगे कि ड्रिवलिंग जबरदस्त होती है, और जिसमें हॉकी का अगर देखा जाए तो बेहतरीन स्टिक वर्क जो है, शानदार स्टिक वर्क हमें एशियन स्टाइल में ही मिलता है, जिसके अमीन जो है पाकिस्तान और भारत की टीमें हैं।
जी ऐसा ही है, और तमाम सुनने वालों को कहेंगे कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0519215377 और 0519215538 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जनाब बिल्कुल आप कॉल भी कीजिए और आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बात हो जाए पीएसएल 2018 की, यानी 2018 की, और इसमें मजीद इंटरनेशनल स्टार्स पीएसएल 3 की कहकशां का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और पीएसएल के तीसरे एडिशन में मजीद कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स फ्रेंचाइजर्स को ये दस्तयाब होंगे। मुल्तान सुल्तान समेत तमाम टीमें नौ क्रिकेटर्स को बरकरार रखने के लिए या फिर तबादलों के फैसला करने का पहले ही वो तब्दील करने के लिए फैसला कर चुकी है। अब अगले मरहले में ड्राफ्ट के जरिए हर टीम ने प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरी का एक एक, सिल्वर के 2 और इतने ही इमर्जिंग और 4 तक सप्लीमेंट्री खिलाड़ी जो हैं उनको मुंतखब करना है। अब अगर हम बात करें गुज़िश्ता इवेंट की, तो उसके बाद मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की जानिब से रिलीज किए जाने वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक पोल में शामिल और ड्राफ्ट के लिए अब वो दस्तयाब हो सकेंगे, और उनमें इंटरनेशनल स्टार्स की जो नई खेप है वो भी शामिल की जा रही है, और इसमें जनूबी अफ्रीका के पॉल जोमेनी, इमरान ताहिर, वाइन पार्नल और एल्बाई मॉर्कर, ऑस्ट्रेलवी मिचेल जॉनसन, क्रिसलैन और इसके साथ साथ जॉन हैस्टिंग्स और इसके अलावा आदिल रशीद, जेम्स विंस और टीम शामिल होंगे। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, ल्यूक रॉन्ची हैं, कॉलन मैनरो हैं, मिचेल हैं, वेस्ट इंडियन एवन लेविस हैं, जैक्सन होल्डर हैं और इसके साथ लैंडल सैमंस और डैरन ब्रावो भी शामिल है। श्रीलंकन अगर हम खिलाड़ी की बात करें तो जनाब एंजेलियो मैथ्यूज भी हैं और बांग्लादेश के भी खिलाड़ी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान हैं, अफगानी राशिद खान के नाम भी शामिल हैं। अगर प्रोटीज ऑलराउंडर पॉल जमैनी की हम बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहते हुए अपनी पूरी तवज्जो महदूद ओवर्स की क्रिकेट पर अब मरकूज कर दी है। इमरान ताहिर और वाइन पार्नल भी पाकिस्तानी शायकीन के जाने पहचाने नाम हैं। कैंग्रो पेसर मिचेल जॉनसन इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो T20 क्रिकेट में जारहाना बैटिंग की वजह से वो काफी मशहूर हो चुके हुए हैं। फ्रेंचाइजेज जो हैं श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज के साथ वेस्ट इंडियन बॉलर और ऑलराउंडर जैक्सन होल्डर की खदमात हासिल करने के भी बहुत पुरजोश होंगी और इसके अलावा जनाब रॉन्ची और मिचेल भी मुख्तसर फॉर्मेट में तहलका मचाने की सलाहियत रखते हैं और काफी सलाहियत रखते हैं। मुस्तफिज की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान और राशिद खान भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मजबूती से अपने कदम जमा चुके हैं और खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ड्राफ्टिंग की जो तारीख है उसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। कितनी ही ये एक्साइटमेंट वाली खबर है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में इतने ढेर सारे गैर मुल्की और टॉप के खिलाड़ी आ रहे हैं,
ये क्रिकेट सुपरस्टार्स हैं नरजिस, और इनकी एक कहकशां जो है पाकिस्तान पीएसएल में सजेगी और पीएसएल से ये सजाएंगे और इस बार हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस जो हैं वो पहले से बढ़कर होंगे क्योंकि शायकीन का जोश व खरोश बहुत ज्यादा है और इंटरनेशनल स्टार्स को वो वेलकम करने के लिए तैयार हैं।
और आप देखें 2018 में अभी बहुत टाइम है और जो लिस्ट हमारे सामने आ रही है हो सकता है उनमें मजीद बड़े बड़े स्टार्स शामिल हो जाएं, ऐसे हैरत अंगेज स्टार्स के जिनके बारे में हम सोच भी ना सकें वो आप पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन जितनी मकबूली पीएसएल की नजर आ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा ना होना मुमकिन नहीं है, यानी वो स्टार्स आ सकते हैं पाकिस्तान। जी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
अपनी सुख का आगाज कीजिए कौमी और इलाकाई अखबार की अहम खबरों और इदारियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार के साथ। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए रोजाना सुबह 7:10 से 8 बजे तक पेश करता है प्रोग्राम आज के अखबार। सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں سپورٹس ورلڈ، اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف ہاشمی. ہمیں ساتھی میزبان ہیں نرجس کاظمی، اور ہم بات کریں گے اب کرکٹ سے ٹینس کی، اور ٹینس سرکٹ میں جہاں ہم بات کریں گے شنگھائی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی، جہاں پر ایک زبردست تاریخی مارکہ ہوا. اور یہ دونوں پلیئرز جو ہیں اپنے وقت کے آؤٹ سٹینڈنگ پلیئر ہیں. راجر فیڈرر جو 18 بار کے گرینڈ سلیم فاتح ہیں اور تاریخ کے سب سے کامیاب ترین ٹینس پلیئر ہیں، ان کا مقابلہ تھا سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر کا مقابلہ تھا اسپین کے رافیل نڈال کے ساتھ، جو کلے کورٹ کنگ کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جو سال کا تیسرا گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ کلے کورٹ پہ کھیلا جاتا ہے، اور کلے کورٹ پہ سب سے زیادہ کامیابیاں اور سب سے زیادہ فتوحات اور سب سے زیادہ بار فرینچ اوپن کو جیتنے کا اعزاز رافیل نڈال کے پاس ہے. آج کل بڑی بھرپور فارم میں ہمیں نظر آئے، اور ان دونوں کے درمیان شنگھائی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا ہے. میچ بہت ہی زبردست، سنسنی خیز، دلچسپ اور ڈرامائی صورت اختیار کرتا گیا، اور دونوں کیونکہ پلیئر زبردست ہیں، اور راجر فیڈرر نے ایک دفعہ پھر شاہکار قسم کا کھیل پیش کیا. انہوں نے زبردست ٹینس سکلز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کو موقع نہیں دیا کہ وہ کھیل میں واپس آ سکیں. پہلا سیٹ جو ہے فیڈرر نے 6-4 سے اپنے نام کیا، اور رافیل نڈال نے کوشش کی کہ دوسرے سیٹ میں وہ کسی طرح ان ہو سکے، لیکن دوسرے سیٹ میں بھی راجر فیڈرر بدستور کھیل پر چھائے رہے، اور اس طرح انہوں نے ایک شاندار کامیابی سمیٹی. 6-4 اور 6-3 سے کامیابی ملی ہے راجر فیڈرر کو. انہوں نے اس سال کا آخری جو شنگھائی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام لکھوایا ہے. زبردست انداز سے انہیں یہ کامیابی میسر آئی ہے، اور اس میں ان کو بہترین قسم کی انہوں نے ٹینس سکلز کا مظاہرہ کیا. انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی بھی ٹینس چیمپئن ہیں اور بڑی ماسٹر کلاس ٹینس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور یہ میچ جو تھا اس کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی.
جی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں کالر جا چکے ہیں. جی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ
بات ہو رہی تھی ان کی فیڈرر اور نڈال کے حوالے سے، کہ دونوں زبردست پلیئر ہیں اور دونوں کے درمیان بہت زبردست میچ ہوا. اس کو پہلے ہی بہت زیادہ شائقین جو ہیں اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور وہاں شنگھائی میں بھی اس میچ کو دیکھنے کے لیے، یہ ہارڈ کورٹ پہ یہ میچ کھیلا گیا تھا، فاسٹ ہارڈ کورٹ پہ، تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے شائقین وہاں پر موجود تھے، اور فل ہاؤس میں یہ میچ کھیلا گیا، اور دونوں نے اپنی جاندار اور شاندار ٹینس سکلز کا جوں جوں مظاہرہ کیا متاثر کن انداز سے، تو انہوں نے شائقین سے بھرپور قسم کی داد وصول کی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ فیڈرر نے یہ میچ جیت کر اپنی رینکنگ کو بھی امپروو کیا ہے.
جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، عارف ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. برائے مہربانی اپنے ریڈیو سیٹ کا والیوم کم کر دیجیے گا.
بند کر دیا.
جی جی،
بہت اچھا ہے.
بہت شکریہ.
جی، میں کال بیک کروں.
جی جی
جی، آپ کے ساتھ آج
عارف ہاشمی ہیں.
عارف ہاشمی صاحب ہیں.
جی جی، عارف ہاشمی صاحب.
جی، ان کو بھی سلام ہو.
جی، وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. کوئی اور سوال ہے، کوئی اور بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں.
عارف صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کل میچ ہو رہا ہے سری لنکا کے ساتھ،
جی جی،
اس میں امن شہزاد کی جگہ اگر عارف کھیل کر میچ ہے تو بہتر ہوگا.
اچھا، یعنی اوپنر آپ چاہتے ہیں کہ چینج کر دیا جائے. ہارس ویل تو اوپن کرتے نہیں ہیں، وہ تو چھٹی پوزیشن پہ کھیلتے ہیں.
اگر اوپنر آ جائے اور ہارس ویل مڈل میں آ
جائے. چلیں، یہ آپ کی خواہش ہے، معصوم سی خواہش ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آیا ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے اس کی، کیونکہ وہ ایک وننگ کامبینیشن ہے. عموماً ایک وننگ کامبینیشن کو چھیڑا نہیں جاتا.
بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا، آپ بات کر رہے تھے جی رافیل نڈال کی.
جی، دونوں کے درمیان زبردست مارکا ہوا، اور شنگھائی اوپن کا میچ تھا یہ، اور یہ میچ 1 گھنٹہ 12 منٹ تک جاری رہا، اور یہ چھٹا ٹائٹل ہے جو انہوں نے فیڈرر نے جیتا ہے.
جی، اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ویمنز کے حوالے سے ہم بات کریں، تو تیان چند ویمنز ٹینس میں 5 بار کی گرینڈ سلام فاتحہ ماریا شراپووا نے پینگ چوئی کو 6-3 اور 6-1 سے شکست دے کر اس نے بھی اپنے فائنل میں قدم رکھ دی ہیں، اور ٹرافی کے لیے انہیں اب بیلاروس کی آریانا का चैलेंज दरपेश रहेगा और उन्होंने दूसरे फाइनल फोर में सारा ईरानी को 6-1 और 6-3 से शिकस्त दे दी थी। तो जनाब इस हवाले से काफी पूरी उम्मीद है हम मारिया शरापोवा के हवाले से कि जिस तरह वो कामयाबियों के झंडे गाड़ती पहुंच चुकी हैं इस वक्त फाइनल में, तो इंशाल्लाह फाइनल भी अपने नाम कर लेंगी।
जी बिल्कुल, ये मारिया शरापोवा आपको पता ही है कि डोप टेस्ट की जद में आई थी और डोपिंग के बाद जो है एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वाजिद साहब, बड़े अरसे बाद आपकी आवाज मैंने सुनी है, अगर से आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन मैं चूंकि इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं था, बहरहाल क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो ये कि नाबीना अपराध का आज आलमी दिन है और मैं खुद भी नाबीना आदमी हूँ, तो मुझे आपके प्रोग्राम के जो मुस्तकिल लिसनर्स हैं जिसमें आप ब्लाइंड हैं अख्तर हुसैन भाई और माजिद अली हमजम और जमशेद अंसारी साहब और खास तौर पर मैं नयाज बहादुर अफरीदी जो हमारे कबायली इलाके के भाई हैं और पहले वो मलेशिया में थे, फिर बारूदी से उनकी वजह उनके पांव लगा था और उसकी वजह से उनके दोनों पांव और दोनों आंखें माजूर हो गई थी, लेकिन अब भी वो हिम्मत करते हैं और उन्होंने एक एनजीओ चला रखी है जो अपनी फैमिली के मेंबर की हेल्प से वो चलाते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूँ और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट की हर दम कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नाबीना अपराध जो है ना उनको घरों में नहीं बैठा लेना चाहिए, उनको बच्चों को खासतौर पर ऐसे जो सेंटर उनके ट्रेनिंग के लिए खुले हुए हैं उनको उसमें दाखिल करना चाहिए। आजकल तो बच्चियों के लिए भी ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि 2% कोटा पर जो है ना अमल किया जाए।
जी जी,
दूसरा ये है कि आज दुआ करता हूँ कि अगर करें पाकिस्तान की आगे टीम जो है अभी जीत जाए।
जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको जिंदगी दे और कामयाबियां दे। बिल्कुल ठीक कहा, आज आलमी दिन है नाबीना अफराद का, तो इस हवाले से वाकई जो आपने बातें की कि हमें अपनी जिम्मेदारियां देखते हुए उनके लिए काम होना चाहिए और पाकिस्तान में काफी होता है इस तरह, जो भी माजूर अफराद हैं उनके लिए स्पेशल कोटा भी होता है और उन हवाले से उनकी तालीम के एजुकेशन के हवाले से भी हुकूमत की बहुत सी कोशिशें।
ब्लाइंड क्रिकेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान का नाम बड़ा बुलंद किया है, वर्ल्ड चैंपियन हैं 3-4 दफा और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देती रही है हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम और बहुत ज्यादा कामयाबियां पाकिस्तान के लिए उन्होंने समेटी है। तो ये जो लोग हैं ये यकीनन इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरक्की में, तामीर में, नाम में, और इन्होंने वाकई में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है और हमें इनका एहसास करना चाहिए इनके साथ।
और इनके मुकाबले भी होते हैं व्हील चेयर के पे बैठी,
जी वो पैरालंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स में भी हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं और बड़ी अच्छी हमने कामयाबियां हासिल की हैं। तो यकीनन
और काफी हौसला अफजाई होती है ऐसे नौजवानों की इस हवाले से जो खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं। बहरहाल बात कर लें कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले वनडे मैचेस सीरीज की, और इसका जो दूसरा मुकाबला है कल वो होने जा रहा है अबू जहबी में, और ये जनाब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच है। और पहले वनडे में जो जीत हुई थी उसके बाद पाकिस्तानी टीम की, तो उन्होंने कल के मैच के लिए भी फतह हासिल करने के लिए काफी अपनी बढ़तरी को डबल करने का प्लान बना लिया है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाजी, कैसे हो? ठीक है,
बिल्कुल ठीक ठाक।
जी जी, अगर जी बात कर रहे हो बाजोट से, सही से।
जी जी कहिए।
जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इमरान नजीर मुल्तान सिंह साहब की टीम में शामिल है या नहीं।
इमरान नजीर मुल्तान की टीम में शामिल है या नहीं, अभी बताते हैं लिस्ट देख के आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे पांच वनडे मैचेस की सीरीज की और इसके मैच की तैयारियों की, तो वो काफी हद तक जो पाकिस्तानी टीम है उसने मुकम्मल कर ली है और फाइनल 11 में तब्दीलियों पर भी गौर किया जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से नई ओपनिंग जोड़ी आजमाने का भी इस हवाले से इम्कान है। तो हम अगर दूसरे वनडे में हम बात करें अगर इमामुल हक की, तो उनके वनडे डेब्यू का फैसला कप्तान सरफराज अहमद विकेट देखकर करेंगे और वो ये क्या फैसला करते हैं तो इस हवाले से तो हम यही कहेंगे तो वो कि वही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो कल जनाब पाकिस्तान का और श्रीलंका के बीच कल मुकाबला है और जैसे कि हमने कहा कि इस हवाले से काफी चेंजेस की गई हैं टीम में और कुछ खिलाड़ियों को भी चेंज किए जाने का इम्कान है। तो ये कौन से खिलाड़ी चेंज होते हैं या क्या होता है तो इसके बारे में तो डिटेल्स हम कल के प्रोग्राम में ही आप सुन सकेंगे।
जी नर्जिस, इसमें यह है कि टीम जब एक विनिंग टीम होती है तो उसका सेटअप को मुश्किल होता है कि उसको चेंज कोई खास लेके जाई जाए। जिस तरह परफॉर्म किया पाकिस्तान ने, पहला वनडे मैच जीता और टेस्ट सीरीज हारने के बाद फिर अपनी कुव्वतों को, अपनी तवनाइयों को यकजा किया, कम बैक किया श्रीलंका के अगेंस्ट, तो मैं समझता हूं कि इसी टीम पर दूसरे वनडे के लिए भी एतमाद बहाल रखा जाएगा। इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद आमिर हमें फास्ट बॉलिंग में अवेलेबल नहीं है, सीरीज से आउट हैं, तो हसन अली उनकी जगह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी बॉलर्स भी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शादाब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग में भी हम देख रहे हैं कि अगरचे टॉप ऑर्डर को कुछ ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए लेकिन यह है कि बहरहाल एक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल में इसी कॉम्बिनेशन को दूसरे वनडे के लिए भी जारी रखा जाएगा और यही हम मैच
बिल्कुल और जो प्लानिंग की जा रही है। तो इस हवाले से अगर हम श्रीलंकन टीम की बात करें तो ये तो सभी जानते हैं कि वनडे सीरीज के पहले मैच में जो पाकिस्तानी टीम है उसने श्रीलंका को आउट क्लास किया है और श्रीलंकन कप्तान भी इस हवाले से दूसरे मैच में, जो दूसरा मैच होना है कल, उसमें अपना हिसाब बराबर करने के काफी ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। तो देखिए उनका हिसाब बराबर होता है या हमारी बढ़तरी होती है।
कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इस सीरीज को किसी भी सूरत में अच्छे अंदाज से विन किया जाए क्योंकि पाकिस्तान एक चैंपियन टीम है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो बाकी टीमों के लिए भी एक एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हो जाता है, मुल्क के लोगों को, शायकीन के लिए भी अपनी टीम के हवाले से जीत के लिए उम्मीदें तवक्कात बढ़ जाती हैं। और जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस है। शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी फायरी इनिंग खेली थी और बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी और फखर को भी एक थोड़ा ज्यादा वक्त क्रीज पर गुजारना होगा। अहमद शहजाद को अपनी थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, दोबारा से बैटिंग रिथम में आना पड़ेगा और टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और जो बॉलर्स ने जो मिस्टेक की हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, बॉलिंग में भी मजीद इम्प्रूव करना है। अगरचे हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और श्रीलंका को मैच के आगाज से ही हमने बैकफुट पर रखा और बॉलर्स ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया कि श्रीलंका की टीम किसी भी मौके पर खेल में हमें वापस आते दिखाई नहीं दी। इसी अंदाज को अपनाना पड़ेगा कि अग्रेसिव क्रिकेट का मुजाहरा करना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हम समहाउ हमने अग्रेसिव क्रिकेट को मिस किया। टीम सिलेक्शन में भी हमने बड़ा दिफाई अंदाज अपनाए रखा और फिर खेल के अंदर भी हमने बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाकर खेले, बहुत दिफाई अंदाज अपनाए रखा। अगर हम थोड़ा सा एग्रेशन शो करते तो हम टेस्ट सीरीज भी किसी भी सूरत में हार नहीं सकते थे, हम वहां भी एक अच्छे अंदाज से कामयाबी ही हासिल करते। बहरहाल जो हो गया सो हो गया क्योंकि मिसबाउल हक और यूनस खान की दम मौजूदगी में पहली बार टीम उतरी थी तो थोड़ा बहुत उसका भी एक इम्पैक्ट था, अफेक्ट था और एक नई क्यादत थी उनको भी, सरफराज को भी। अब टेस्ट अरीना को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जो वो एडजस्ट होने में लेंगे, उसके बाद यकीनन यहां भी कामयाबियां हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। और सामीन अब वक्त हुआ है खास खास खबरों के खुलासे का जिसके लिए हम बढ़ते हैं नर्जिस काजमी की तरफ।
खास खास खबरों का खुलासा। पुरम एजेंसी में आज सुबह बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत चार सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंसाफ का मियार बेहतर बनाने के लिए कानूनी अमल की पासदारी यकीनी बनाना होगी। तुर्की की फौज शाम के शुमाली मगरबी हिस्सों में अपनी फौज की तादाद में इजाफा कर रही है जो अस्करियत पसंदों और सरकारी फौज के दरमियान लड़ाई की शिदत में कमी की एक कोशिश है। बांग्लादेश में आज तीसरे पहर 10वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। यह तो था खास खास खबरों का खुलासा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा सुन सकेंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔